ओम शांति। इस पुरानी सृष्टि रूपी कांटों के जंगल को परिवर्तन कर रूहानियत से संपन्न फूलों का बगीचा बनाने वाले इस ईश्वरीय महान कार्य में अपना विशेष योगदान देने वाले बाबा के अनन्य रतन रूहे गुलाब हमारे आदरणीय नंजप्पा भाई जी आज आप हम सभी के बीच पधारे। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व आपको परमात्मा पहचान मिली, साथ साथ स्वयं के बारे में और समय के बारे में पहचान मिले, तो आपने अपने जीवन का निर्णय लिया कि सांसारिक जो लोक लाज कुल की मर्यादाएं हैं उनको त्याग कर यहां तक कि अपने लौकिक जॉब जो गवर्नमेंट जॉब था उसको भी त्याग कर स्वयं को इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया। तो आप एक ऐसी विशेष आत्मा हैं जो भगवान के प्रति और भगवान के कार्य के प्रति समर्पित आत्मा हैं। आप पिछले 28 वर्षों से मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आपकी विशेष सेवाएं गार्डनिंग की हैं। आप सरलता की मूर्त हैं, निर्माणता, मिलनसार, ये आपकी विशेष खूबी है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय नंजप्पा भाई जी ने जो इस ज्ञान योग के मार्ग में त्याग तपस्या और सेवा के माध्यम से स्वयं के अंदर अनेक प्रकार के अलौकिक अनुभव एकत्रित किए हैं, उन अनुभवों के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करेंगे आदरणीय नंजप्पा भाई जी।
ओम शांति। पहला प्रश्न है, आप ज्ञान में कैसे आए और कब आए?
ओम शांति। सबसे पहले आप सबसे एक निवेदन है, हम तो साउथ इंडिया का है, हमारा हिंदी भाषा इतना नहीं है क्योंकि वहाँ हिंदी नहीं चलता है। हमने जो भी हिंदी सीखा या बोलना सीखा पढ़ना सीखा मधुबन में ही सीखा है। अगर मेरे से कुछ गलत शब्द निकल जाएंगे तो माफ कर देना। तो भाई सब ने पूछा आप ज्ञान में कैसे आए, क्यों आए। जैसे मैंने गांव में जन्म लिया, फिर जैसे सिटी में आए तो उसके बाद में 72 में मैंने स्टेट गवर्नमेंट में यही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में गार्डन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। तो 76-77 में ज्ञान में आया। ये 72 से 76 के बीच में, तो जब हम सर्विस में थे बहुत सारी दोस्तों के साथ मिलते थे तो वो लोग कितने खुशी में नशे में हमारे साथ रहते थे। जैसे शादी हो जाता था उसके बाद में उनका सब कुछ चेंज हो जाते थे, कभी 6 महीने में कभी 1 साल के अंदर ही उनके अंदर इतनी उदासी, झगड़ा आपस में, बहुत कुछ मैंने देखा। मैंने सोचा संसार में कुमार लाइफ से जब फैमिली लाइफ में आ जाते हैं सुखी रहते हैं, ऐसे मैं सोचा था। परंतु उन लोगों को देख के मेरे को कुछ संकल्प चलने लगा, यही लाइफ है क्या। और इसके साथ साथ में मैंने ज्यादा तो पढ़ा नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद का या रामकृष्ण परमहंस का कुछ कुछ पढ़ते थे मैंने, उस समय मेरे मन में भी विचार आते थे, हमारे लाइफ में भी हम ऐसे क्यों नहीं रह सकता है, हमारा जीवन को भी ऐसे बनाना चाहिए ना, ऐसे संकल्प कभी आते। जैसे मेरे को 74 में मैसूर के पास एक वृंदावन गार्डन है, आप में से किसी ने देखा होगा पता नहीं, वहां ट्रांसफर हुआ। वहां जब ट्रांसफर हुआ तो हम लोग तीन बैचलर थे, एक क्वार्टर्स गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिला था, हम तीनों साथ में रहते थे। एक दिन ऐसे ही तीनों में आपस में डिस्कशन, क्योंकि सभी का 22, 23, 24 ऐसे मैरिज का एज था, आपस में भाई शादी कौन कब करेगा पहले, तो एक ने बोला हम इतने साल में करेंगे, दूसरे ने बोला हम इतने करेंगे। मैंने बोला भाई मैं सोच रहा हूं मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूं, तब ज्ञान में नहीं था मैंने, ऐसे हम दोनों में ऐसे डिस्कशन हुआ था। ये हमारा संसार का,
तो ज्ञान में आप कैसे है, माने ज्ञान कहां मिला आपको?
तो इसके बाद में जैसे हम वृंदावन गार्डन में सर्विस करते थे, उस समय मैसूर में मैं कमरा लेके वृंदावन गार्डन से मैसूर में शिफ्ट हो गया। गार्डन में तो क्वार्टर्स में थे, मैसूर सिटी में आने के बाद में बड़े मकान तो मुश्किल हो जाते, क्योंकि उस समय हमारा पेमेंट भी बहुत कम था। एक छोटा सा कमरा लिया, उसमें हम दो रहते थे, उसमें से एक की शादी हो गया। तो उसी समय 1976-77 में जिस एरिया में हम रहते थे, उस एरिया में मैसूर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एग्जीबिशन हुआ, क्योंकि उनकी विचार था उस एरिया में सेंटर खोलने का। तो मैं, मेरा रूम और ये एग्जीबिशन का बहुत नजदीक ही था, दिन में चार बार हम लोग उस एग्जीबिशन के सामने ही गुजरते थे, आना जाना करते थे। 15 दिन चला उस समय, तो अभी जैसा सब जगह एग्जीबिशन सेट नहीं मिलते थे, दिल्ली से मंगाया था मेला का सेट, बहुत धूमधाम से वो लोग अरेंज किए थे। मैंने 15 दिन तक एक दिन भी अंदर जाने का संकल्प नहीं किया, मेरे को पहले से भी हर चीज में इतना एक इंटरेस्ट नहीं था, दुनिया में सब कुछ चलता है, ये भी चल रहा है, इसको क्या देखना है। बाबा कहते हैं ना, ड्रामा में किस आत्मा का पार्ट कब है और किसका तकदीर कब खुलता वो हमको पता नहीं है। जब 15 दिन हो गया, उनका लास्ट डे था, वो भी शाम को 5:30 बजे था, हम लोग ड्यूटी से आए, हमारे दोस्त हम दोनों चलो यार चाय कॉफी पी के आएंगे। जब उस एग्जीबिशन के सामने आया तो वो हमारा दोस्त ने पूछा, भाई साहब अब इसके अंदर गए हैं क्या? नहीं, उन्होंने देखा था परंतु वो छोड़ के चले गया ज्ञान। तो उन्होंने बोला, नहीं भाई साहब बहुत अच्छा है, तो चलो आज देख लेंगे। जैसे हम लोग अंदर गए, तब तक 2-3 चित्र निकाले दिया था, वो लोग वाइंड अप कर रहे थे, एक साइड में फंक्शन का भी तैयारी कर रहे थे। तो सोचते हैं ना, अभी 15 दिन से कोई आए नहीं है, अभी कौन आएगा, वो सारा वाइंड अप करने का उनका मूड था। तो मैं जब अंदर गया तो एक बहन जी आत्मा के जो चित्र है उसमें एक्सप्लेन कर रही थी, मेरे को भी बोला आप उसमें खड़े हो जाओ, 5-6 लोग थे, मैं भी जाके पीछे खड़े हो गया। जैसे बाबा कहते हैं ना, आपको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलेगा, वो सेकंड था सचमुच। जैसे मैं जाके सामने सबके पीछे खड़े हो गए, बाबा ने पता नहीं कैसे मेरा बुद्धि का ताला खोला, क्या है मेरे को कुछ पता नहीं, मैं जैसे खड़ा हूं वो आत्मा के चित्र में वो बहन जी जो एक्सप्लेन कर रही है, एक एक पॉइंट भी इतनी अच्छी तरह से मेरे बुद्धि के अंदर जा रहा है, मैं आज भी वो बोल नहीं सकता। उसी एक चित्र में मैं पक्का हो गया, सचमुच मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं है। इतना अच्छा ज्ञान हमारे जीवन में सचमुच इसको धारण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। हम लोग अभी तक नहीं सुना है। उसी एक चित्र में मैं पक्का हो गया। आगे चलते चलते बहुत सारे एक्सप्लेन किया, तो वो चित्र देखते देखते मैंने दो चीज को भी त्याग किया हमारे जीवन में। एक सिनेमा देखना, वो भी एक पिक्चर था, ये पाप की माँ है, कैसे पाप का पोषण होता है। और ऐसे आगे चल के हम लौकिक में नॉनवेज भी यूज करते थे, उसका भी एक चित्र था, इंसान को पाप कैसे चढ़ता है एक इसको हत्या करने से। वो भी उसी सेकंड खड़े खड़े ये दो चीज को मैंने छोड़ा। इस रीति से मेरे को इस ज्ञान मार्ग में आने का बहुत प्रेरणा मिला। आत्मा के एक चित्र में ही मेरा भाग्य खुल गया।
नेक्स्ट प्रश्न है, आपको सांसारिक आकर्षण से फिर वैराग्य कैसे आया, दोस्तों को देखकर या और कुछ है?
नहीं, दोस्तों को देख के भी है और संसार का जो भी व्यवहार था ये सभी देख के। तो मैंने पहले ही बताया ना, जैसे इस संसार में कुछ है ही नहीं है, है क्या, तो लोग सुख के लिए इतना सारा व्यवस्था करते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ता रहता है, इससे फायदा क्या है? ऐसा जीवन से हमको क्यों चलना है? कैसे भी हमको तो इससे डिटैच ही रहना है। लौकिक में भी मैं ऐसे ही सोचते थे, फिर ज्ञान में आने के बाद में तो बहुत सहज हो गया मेरे को।
जब आप ज्ञान में आए तो घर वालों ने आपको पूछा नहीं शादी वादी के बारे में?
वो सब छोटी बात है, क्योंकि घर में गांव में रहते थे माँ बाप, घर में मैं ही बड़ा लड़का था और हमारे सब छोटे छोटे भाई थे, तो बात तो आए छोटे छोटे जैसे भोजन की, क्योंकि लौकिक में घर में जाते ही नॉनवेज का तो पहले वही शुरू हो जाता है। तो मैंने बहुत युक्ति से बोला, देखो अम्मी मैं डॉक्टर के पास गए थे, मेरे को पेट दर्द हो रहा था। हमारे माताजी को बोली बाली थे ना, उनको क्या पता है, तो डॉक्टर ने बोला पेट के अंदर अल्सर है, अगर आप ये नॉनवेज यूज करेगा ना वो फट जाएगा, आप मर जाएंगे, अभी आप ही बताओ मैं खाऊं या नहीं खाऊं। नहीं नहीं करना नहीं करना। तो इस नहीं, बाबा कहते हैं ना युक्ति, युक्ति से चलना है। तो इस रीति से वो छूट गए, फिर उसके बाद में इजी हो गया मेरे को। जैसे हमारे घर में यूज नहीं करते थे, हमारा लौकिक गांव में पूरा फैमिली परिवार थे, कोई भी हमारा लौकिक वाले बुलाना ही छोड़ दिया, और थोड़े दिन में ही प्याज लहसुन का भी छोड़ दिया। तो जो भी सामने मिलते थे आपको हमारे घर में बुला के क्या फायदा भाई, आप तो खाना भी नहीं खाते हैं, तो वो सहज हो गया मेरे को। और मैं अकेले होने के कारण से मैसूर में मैं खुद सब कुछ बाबा का जो नियम है वो धारण करने में भी इजी हो गया। उसके बाद में एक साल के बाद ये मैरिज की बात आए, एक दिन मेरा हमारा पिताजी मम्मी दोनों को बिठा के मैंने एक बात बोला, देखो एक काम करो, एक लड़की को देखो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरा एक विचार है, अभी तो मैं शादी कर लेंगे, फिर बाद में ये नहीं पूछना शादी के बाद ये बदल गया, हमारे से बात ही नहीं करता है, हमारे पास आता ही नहीं है, ऐसे नहीं बोलना। मेरा विचार है मैं मरने तक भी आप लोगों की सेवा करूं। तो पता नहीं आप कौन सी लड़की देखेंगे, वो कैसे आएगी, वो कैसे रहेगी, वो आते ही मेरे को चेंज कर सकती हो, तो फिर आप उस समय आप लोग कुछ नहीं बोलना मेरे को, अभी सोचो। आप मेरा विचार है मैं ऐसे ही रह करके अंतिम समय तक आपकी सेवा करूं। तो वो लोग सोचने लगे, तो अनपढ़ लोग हैं ना गांव के हैं ना, तो इसीलिए सहज रीति से उससे भी मुक्त हो गया,
उसका भी फायदा उठा लिया। अच्छा नेक्स्ट है, आपको मधुबन में समर्पित होने का विचार कैसे आया?
जैसे मैं 77 में फर्स्ट टाइम कुमारों की बट्टी में मधुबन में आए, उस समय हम लोग मैसूर जोन से दो कुमार आए थे, टोटल ऑल इंडिया से 70 कुमार थे। उस समय मधुबन भी बहुत छोटा था, अभी जो मधुबन है उसमें आधा भी नहीं था। भोजन बनते थे वो हमारा टावर ऑफ पीस के सामने, और हमारा डाइनिंग हॉल था, अभी रेलवे ऑफिस रतन मोहन दादी का ऑफिस जो था वो डाइनिंग हॉल था, वही बड़ा डाइनिंग हॉल। सब भी दादियों से ही सब वहां ही भोजन करते थे। अगर हम लोग पार्टी में अगर 50, 100, 150 आ गए तो बहुत बड़ा ग्रुप था ऑल इंडिया से। उस समय सदगुरुवार के दिन ब्रह्मा भोजन बनते थे, उस समय दादियों के साथ छोटे हाल में ब्रह्मा भोजन में हम सभी बैठते सब नीचे। तो जैसे मैं पहली बार मधुबन में आया उस समय एक आवे या दो आवे दादी, मनमोहिनी दीदी करके बड़ी दादी बड़ी दीदी थी, और मोहिनी बहन, तीनों सभी का परिचय लेते थे। तो मेरे को हिंदी भी नहीं आता था, मेरा भाई मेरे साथ जो भाई आए थे उसको थोड़ा हिंदी आता था, तो मेरे से जब पूछा मैंने परिचय दिया, ऐसे ऐसे मैंने गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ बगीचे में। दादी ने बोला अच्छा तुम बगीचे में सेवा करता है, तो सबसे पहली शब्द दादी के मुख से निकला तो हमारा बाबा का बगीचा भी देखो ना ठीक ठाक करो, पहला शब्द। और उस समय मोहिनी बहन जी को भी इंटरेस्ट था गार्डन में, तो उन्होंने भी बहुत सारा परिचय पूछा मेरे को, घर में कौन है, क्या है, कितने लोग हैं, आप क्या करते हो। तो देखो मेरे तरफ से आपको छुट्टी है, आप मधुबन में कभी भी आओ, साल में कितनी बार भी आओ मना नहीं है, परंतु जब भी आएगा बाबा का बगीचे को संभालना जी। मैं हिंदी में वो बोलती थी, वो मेरे को बोलता मैंने पहले ही बोला ना यार तो इसके बाद में जब लास्ट में हम लोग वापस गए, वापस जाने से पहले जब बाबा के कमरे में गया मेरे को रोना आ गया, बाबा मेरे को हिंदी नहीं आता है, यहाँ सब कुछ हिंदी में ही चलता है, कुछ भी हो मैं यहाँ से जाने के बाद में मैं हिंदी सीखना है, अगली बार मैं मधुबन आने तक हिंदी अच्छी तरह से सीख के आएंगे। तो यहाँ से जाते ही हमारा जो टीचर बहन थी, मैं हिंदी का फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो किताब होता है ना छोटा वाला, वो लिया खरीद के मैंने। तो फिर वो बहन जी से जैसे LKG बच्चे सीखते हैं ना, ऐसे एक ऐसे मैंने फुल ट्राई किया, विद इन 3 मंथ मैंने बाबा का अव्यक्त मुरली पढ़ के क्लास कराया, केवल 3 महीने के अंदर इतनी लगन से मैंने पूरा सीखा, तो उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर बाद में जब 78 में एक महीना यहाँ सेवा के लिए आया मैंने, उसके बाद में मैं हर साल कम से कम 5-6 बार मधुबन आ जाते थे, हमारा कोई भी छुट्टी होता था तो गवर्नमेंट का 2-4 छुट्टी मिल गया और 2-4 दिन एक्स्ट्रा डालने का फिर मधुबन, ऐसे पूरा साल में कम से कम 5-6 बार तो मैं मधुबन में ही होते थे यहाँ। तो 78 में जब मधुबन आया तो मधुबन में सेवादारियों का और बाबा मधुबन निवासी और सेवादारियों से मिलने के लिए बाबा के कमरे में आया था। उस समय बहुत तो मधुबन निवासी भी ज्यादा से ज्यादा 25-30 तक थे, हम लोग सेवादारी 15-20 थे, करीब 50 तक बाबा के कमरे में बैठ गए, क्योंकि उस समय कुछ भी बात होता था दादी पटक से बाबा को बुला देती थी, बाबा के दादी के कमरे में बुलाते थे कोई भी बात पूछना है, क्योंकि ऐसे घरेलू जैसा बाबा का मिलन होता था। जैसे बाबा के कमरे में बाबा आए, सभी के बाबा ने मुरली चलाया तो पर्सनल मुलाकात था, तो दादी ने कहा पहले सेवादारी आवे बाबा से टोली लेके जावे, तो मेरा टर्न आया, सभी नीचे ही बैठे थे जहां बाबा का अभी ट्रांसलेट है, वहां गुलजार दादी बैठी थी, वहां बाबा आए थे, दादी सब कोई सोफा कुर्सी कुछ नहीं। मैं जब बाबा के सामने आए, बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दिया। बाबा से दृष्टि लेते लेते ही मेरे को दोनों अंकों में आंसू आ गया। फिर बाबा ने कहा, तुम लक्की स्टार हो, तुमको बहुत बड़ा लॉटरी मिल गया। ऐसे बाबा ने सबसे पहले ये दो वरदान मेरे को दिया। उसके बाद में जब वापस मैं घर जाने का टाइम था, तब भी मैंने संकल्प किया, नहीं अभी मेरा जीवन जैसे बाबा ने कहा लक्की स्टार, सचमुच मेरे को लक्की स्टार बनना ही है। ये लौकिक दुनिया में क्या है, हमको क्या करना है। तो इस रीति से सबसे मेरे को संकल्प शुरू हो गया मधुबन निवासी बनने का।
अच्छा, तो 78 से आप इधर आ गए
जी? नहीं नहीं, वो तो 85 में आया।
आप फिर 78 से इधर रहे?
नहीं नहीं नहीं, मैं चले गया ना।
फिर कितने साल बाद आए?
10 साल के बाद।
अच्छा,
मधुबन में पढ़ने।
तो अभी रिटायरमेंट है मानो, गवर्नमेंट की सर्विस से उद्योग से आपको भी?
नहीं नहीं, केवल 18 साल सर्विस हुआ था। 78 में मैंने गया, फिर ओम शांति भवन का काम 80-81 शुरू हो गया। तो उस समय भी हम लोग सेवा में आते थे 15 दिन 1 महीना ऐसे। देखिए बाबा के सेवा में हम लोग, जैसे बाबा कहते हैं ना, तन मन धन से, मन वचन कर्म से, हम जितना निष्ठा से बाबा के सेवा में लग जाते हैं, हमको लौकिक में भी कितनी अच्छी मदद मिलता था। हमारा जो ऑफिसर्स है ना, जहां भी हम जाते थे इतना अच्छे ऑफिसर्स मिलते थे। मैं 1 महीना छुट्टी लेके यहाँ आते थे सेवा पे, फिर वापस जाने के बाद वो ऑफिसर्स मेरे से पूछते थे, भाई जाके क्या किया आपने, एक आधा घंटा मेरे से इंटरव्यू लेते थे। फिर वो बोलता था मेरा जो लीव लेटर है ना, वापस मेरे को देखे, वो रजिस्टर अटेंडेंस जिसे मेरे सामने रख के पूरा साइन करो, ये लीव लेटर फाड़ के फेंक दो। इतने अच्छे ऑफिसर्स, क्योंकि हम लोग जब वहां सर्विस में भी इतनी ऑनेस्टी में रहते थे। बहुत बार ऐसे उन्होंने मेरे को मदद किया है। और उसके बाद में जब ओम शांति भवन का काम शुरू हुआ, दादी जी ने जिसका फाउंडेशन डालने के समय ही दादी जी ने उद्घाटन का डेट भी फिक्स कर दिया, 83 जनवरी 18 ओम शांति भवन का उद्घाटन होना है। तो मेरे को 82 में बेंगलुरु में ट्रांसफर हुआ था, तो यहाँ का गार्डन भी बनाना था बिल्डिंग के साथ साथ। तो दादी जी ने लक्ष्मीबेन जी को फोन किया, उस लड़के को कैसे भी करके 5-6 महीना छुट्टी लेके यहाँ आवे, गार्डन बनाना है। तो ऐसे 5-6 महीने तो छुट्टी ले सकते हैं। तो मेरे को फोन में बताया लक्ष्मीबेन जी ने, मैंने सोचा मेडिकल ग्राउंड में हमारा डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, एक सर्टिफिकेट ले लिया। तो एक सर्टिफिकेट लेके 1 महीना छुट्टी डाल दिया ऑन मेडिकल ग्राउंड। तो पे मिले या नहीं मिले, चालू टिकट ले लिया हम लोग। उस समय तो रिजर्वेशन भी मुश्किल से मिलता ही नहीं था। लेके मैं और मेरे साथ शिव कुमार है ना, ओम निवास, उस समय वो 6 महीना हुआ था ज्ञान में आके, हम दोनों चालू ट्रेन में आ गया। जैसे उस समय आने के लिए हम लोगों को 3 दिन और 3 रात लगते थे, परंतु बाबा भी कम नहीं है, हमारा बहुत परीक्षा लेते हैं। उस समय एक एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग 3 रात 3 दिन 5-5 जगह पे ट्रेन चेंज करके इतनी टायर्ड होके आए मधुबन, रात को 10-10:15 बजे अबू रोड में उतरे। अभी उस समय मधुबन अभी जैसा तो नहीं था, यहाँ अबू रोड भी आधा छोटा रोड था, गाड़ी भी बहुत कम निकलते थे, छोटा गांव जैसा ही था ये। तो हमने सोचा चलो यार आज रात को गाड़ी कहाँ मिलेगा, हम यहाँ ही संगम भवन में सो जाएंगे। जिसे रेलवे स्टेशन से बाहर आए, एक जीप वाले चिल्ला रहा था माउंट आबू। तो हम तो खुश हो गया, भाई सीधा माउंट आबू चले जाएंगे मधुबन। तो हम दोनों, उस समय तो ट्रंक था, अभी जैसा सूटकेस नहीं था, दोनों के पास एक एक ट्रंक, एक एक हैंड बैग और दोनों का एक भोजन की बैग, गाड़ी में डाल के बैठ गए हम लोग। तो हमारे साथ चार पांच लोग और बैठ गए, क्योंकि वो सब पांच लोग यहां से डेली सर्विस करने वाले। वो जीप निकले 11 बजे वहां से, चिपाबेरी तक आया, एक बार बंद हो गया।
रात को 11 बजे
12 बजे चिपाबेरी पहुंचा, बंद हो गया। वो ड्राइवर ने आगे पीछे किया तो एक बार स्टार्ट किया, स्टार्ट करके अभी भी वो 14 किलोमीटर का एक पत्थर है वहां, वहां तक आके फिर बंद हो गया। फिर बंद होने के बाद में 12:30 होगा उस समय, आधा घंटा बहुत मेहनत किया ड्राइवर ने, स्टार्ट नहीं हुआ। वो नीचे उतर के बोलते हैं, भाई साहब ये जीप ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। अभी आप सोचो, 3 दिन हम लोग इतना ना खाया ना पिया, जनरल डब्बी में आप सोच सकते हैं हम लोग कैसे रह सकते ब्राह्मण। तो इतनी थक के आए हैं, अभी हमारे पास लगेज है, 14 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना है। अभी जैसा रात को जैसे गाड़ी चलते वैसे गाड़ी भी नहीं था, क्योंकि वो पहली परीक्षा था बाबा का हमारा। तो मैंने शिव कुमार को बोला, शिव कुमार बाबा ने टेस्ट ले रहे हम लोगों को, इससे हमको पास होना यार। तो वो चार पांच लोग थे उनके पास लगेज नहीं था, वो लोग निकल पड़ गया, भाई अब सवेरे तक इधर इंतजार करने के बजाय हम पहुंच जाएंगे सवेरे तक। अभी हमारे पास अभी 6 महीना रहना माना, इतना कपड़ा और बैग लगेज और पहले इतनी थके हुए हैं, तो अभी हम क्या करें। सिर पे ट्रंक रखा, एक ठेली लटकाया, तो निकले हम लोग भी। भाई साहब चले 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 सवेरे 5 बजे पांडव भवन की गेट में पहुंच गया। आखिर बाबा का वो टेस्ट में हम पास हो गया। आके यहाँ पांडव भवन के सामने 1 घंटा ऐसे ही बैठ गए हम लोग, ना किसी से पूछा, क्योंकि इतना हम लोग थक गया था।
फिर यहाँ सार संभाल करने में यहाँ जब पहुंचे तो किससे मिले सबसे पहले आप?
उसके बाद में तो जैसे दादियों से मिले, फिर दाम मोहिनी दीदी सभी से मिले, क्योंकि उस समय तो जैसे घर की जैसा ही हो गया था मैं, क्योंकि साल में 5-6 बार तो आते थे। तो फिर दादी ने सुना, सभी दादी दीदी ने सुना, सभी हंसे। तो फिर भी दादी ने बहुत अच्छा है करके फिर यहाँ आके हम लोग सवे रात को 12-12 बजे तक भी यहाँ ओम शांति भवन का पीछे से गार्डन करते करते ये 83 जनवरी 1 तक फिनिश किया हम लोग गार्डन। नहीं उस समय तो दादी ने ही बुलाया था ना। तो उसके बाद में दादी जी ने कहा मेरे को, दादी दीदी मोहिनी दीदी तुम रुक जाओ। मैंने कहा दादी मैं आएंगे, हमको थोड़ा सा काम है, क्योंकि हमारे घर में हमें ब्रदर्स छोटे छोटे थे सभी, मैं ही बड़ा था। और 1980 में हमारे पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे, तो अगर मैं अभी यहाँ रुक जाऊं तो बाबा का डिससर्विस हो जाएगा ना। तो वो सोचा मैंने, क्योंकि उन सभी को एक सेटल करूं मैं, फिर मैं तो आना ही है मधुबन, मेरा लाइफ ही वही है, मैं पक्का आएंगे दादी। तो ये शिव कुमार है ना, ये तो घर से निकाल दिया था, इसको सबसे छोटा था, उनकी माँ बाप ने उनको मार मार के बाहर भेज दिया था, क्योंकि तुम रहना हो तो आश्रम घर में रहो, नहीं तो आश्रम में चला। सबसे छोटा, बहुत लैंडलॉर्ड लोग है, तो भी उन माँ बाप दोनों उनको ये बाहर रहता था 6 महीने में ही। तो फिर मैंने कहा दादी ये 6 महीने से मेरे से कुछ सीखा है, अगर इनको कुछ चाहिए तो मैं उनको पत्र लिखेंगे, तो ये इनको यहाँ रखेंगे। ऐसे करके शिव कुमार को यहाँ छोड़ के मैं फिर मनु वापस गया।
आपके अंदर कौन कौन सी विशेषता है जिसके कारण आप आगे बढ़ रहे हो?
विशेषता हो तो बाबा ही जानते हैं। हम तो ये एम रखते हैं, हम इतना बड़ा परिवार में हैं। बाबा ने जैसे हम मधुबन में 87-88 में आया, तो तब से पहले से भी दादी दीदी सब, दादी दीदी तो 83 में जैसे मैं इधर से गए 6 महीना छुट्टी करके, उसके बाद में दीदी तो शरीर छोड़ दिया जुलाई में। तो दादी और मोहिनी बहन जिसे मिलते थे, जब वो मैसूर में साल में 1 बार तो आते तो वहां भी मिलते थे, मोहिनी मैन में जब भी मिले तो तुम कब आएगा मधुबन, ऐसे बोलती थी। तो इस रीति से मैं से घरेलू जैसा ही हो गया था। मधुबन में सबसे आधा मधुबन निवासी तो बन गए थे। फिर उसके बाद में मैंने जैसे मधुबन आने का पूरा संकल्प किया, उस समय मैंने लौकिक में भी पूरा देखते थे कितना अत्याचार भ्रष्टाचार ये रिश्वत ये सारा देखते थे ना, मेरे को बहुत नफरत आते थे वहां। ये काम करने के लिए हम लोगों को यहाँ नौकरी करना है, तो ये नौकरी करके अगर ये पैसा कमाएंगे तो भी हम क्या करना है पैसा नहीं, मेरे को मधुबन जाना है। 1985-86 तक हमारे जो भी ब्रदर्स थे वो सभी को मैंने एक दो का मैरिज में खुद कराया, क्योंकि वो कोई ज्ञान में नहीं थे। फिर लास्ट वाला एक था वो फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता था, तब तक पूरा सेटल हो गए थे। उस समय जनवरी 88 में मेरे को बहुत पावरफुल संकल्प आना शुरू किया, अभी आपको मधुबन चलना है। तो ऐसे ही मैंने लक्ष्मी बहन जी को बोला मेरे को मधुबन जाना है, अभी मधुबन में समर्पित हो जाता हूँ। तो उन्होंने ऐसे हंसी मजाक में बोल रहा है करके ऐसे समझा। तो फिर हम लोग उस समय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी था यहाँ फेब्रुवरी में, हम दो ही आए लक्ष्मी बहन जी के साथ में। यहाँ आते ही लक्ष्मी बहन जी ने मोहिनी बहन जी को कहा, मोहिनी बहन जी अभी ये नंजप्पा समर्पित होना चाहता है। अच्छा, इसका तो समर्पण समारोह कर देंगे मैं, ऐसे बहन जी ने कहा। तो फिर वो छुट्टी मिल गई ना, फिर वापस जाने के समय लक्ष्मी बहन जी चलना मेरे साथ। क्यों? आपने तो मेरे को छुट्टी दिया है, मैं तो आने वाला नहीं है, मैं तो तैयार होके आया था। कि वहां मेरा ऑफिस में भी सबसे छुट्टी लेके वो लोग भी बोलते थे भाई अभी इतना अच्छा नौकरी छोड़ के आप जा रहे हो, फिर आगे आपका लाइफ क्या है, ये क्या है, उनका तो कई प्रश्न होता है ना। तो फिर यहाँ आने के बाद में मेरा संकल्प ये था, इतना बड़ा परिवार में है, किसी भी कारण से मैं बाबा का नाम बाला करना है। कोई भी बात संगठन में कुछ भी आवे या कुछ भी हो, हम यहाँ आए हैं हम अपने को देखने के लिए, अपने को परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो बाबा ने हमको एम दिया है मनुष्य से देवता बनना है, तो ये मेरे अंदर पूरा एम था। कोई भी कुछ भी करे या कुछ भी बोले उस तरफ मैं ना कुछ देखता था ना सुनता था। तो बाबा ने मेरे को यहाँ शुरू से जब से मैं ज्ञान में आया तब से भी और मधुबन में आने के बाद भी, दादी ने ये गार्डन की जो सेवा दिया तब भी मैंने संकल्प किया, क्योंकि जब वहाँ सेंटर पे हम लोग क्लास में जाते थे जो जो कुमार है उन सभी को अनुभव है, ऑलराउंड सेवा करते थे हम लोग, रोज कहीं ना कहीं क्लास कराने जाना, एग्जीबिशन होगा तो एक एक महीना छुट्टी लेके एग्जीबिशन करते थे, और दूसरा कुछ भी हो सेंटर में भी जहां तक भी ये कर्टन और क्लास की कपड़ा धुलाई करने से लेके हर प्रकार की सेवा करते थे, माइक सेट का इलेक्ट्रिसिटी का ऑलराउंड सेवा करते थे। परंतु यहाँ मधुबन में जब आया बाबा ने ये गार्डन की सेवा दिया, मैं उसी समय संकल्प किया मैं इसी सेवा में बाबा का ज्ञान देना है, दूसरी कोई भी इच्छा मेरे अंदर में ना हो, ये संकल्प सबसे पहले किया मैंने उस दिन और आज। क्योंकि बाबा का गार्डन बाबा की घर की चेहरा है, जैसे हम लोग कपड़ा कितना भी अच्छा पहने अगर चेहरा ठीक नहीं है बाल ठीक नहीं है तो देखने वाले क्या बोलेगा, कपड़ा तो नहीं देखेगा ना। इस रीति से बाबा का जो गार्डन है बाबा की घर की चेहरा है, जैसे कहते हैं ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। इस रीति से बाबा के घर में जो भी बाबा का बच्चे आएंगे नए पुराने जो भी हो, इस गार्डन को मेरे से जितना हो सके हम एक्यूरेट रखें, उसी से ही मेरे को बाबा का ज्ञान देना है। वही संकल्प उस दिन भी आज भी मैंने रखा है, उसी से बाबा हमको शक्ति भी दे रहा है सहयोग भी दे रहा है।
वर्तमान समय आप कर्म क्षेत्र रहते हुए कर्म योग की स्थिति बनाने के लिए आप क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या वो नेचुरल हो गई है या अभी भी पुरुषार्थ करना पड़ता है?
ये अभी जो मैंने बताया ये तो हमारा नेचुरल हो गया है, फिर भी अगर बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम समय तक भी माया आपको वार करेगा तो कुछ ना कुछ बातें आता है, वो तो ये मेन नहीं है, परंतु यही मैंने बुद्धि में सदा है, जो कर्म हम करेंगे मुझे देख और करेगा। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे को देखे या नहीं देखे, बाबा तो मेरे को देखता है। क्यों? बाबा भगवान है, मैं उनका माली हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बाबा हमको भले हम कुछ भी सेवा करें, कहाँ भी सेवा करें, कितनी आनेस्टी से प्यार से यज्ञ की सेवा हम लोग करते हैं, उसके रिटर्न में बाबा हमको क्या देता है? बाबा हर सेकंड हमको देखता है। 2007 में दिसंबर 31 था, नया साल के लिए उस समय बाबा 12 बजे तक रुकते थे। जब बाबा ने मुरली चला के पूरा हो गया, तीनों भाइयों को मैंने गुलदस्ता दिया, गुलदस्ता देके बाबा के गद्दी के पीछे मेरे को और एक गुलदस्ता बनाना था, क्योंकि 12 बजे मोहिनी बहन जी गुलदस्ता देने वाले थे बाबा को, उनकी बर्थडे है ना January 1st, वो गुलदस्ता बनाना था। जैसे बाबा का गद्दी के पीछे गए, बाबा ने उन तीनों से गुलदस्ता लेने से पहले उनको बोला उसको बुलाओ इधर, मैं तो पीछे बैठ के मेरे बिजी हूं मैं, क्योंकि 12 बजे तक उनको देना है। तो सभी ने आवाज किया, मोहिनी बहन जी, नीलू बहन, सभी, ए नंजप्पा बाबा बुला रहे, बाबा बुला रहे। तो मैं बाबा के सामने आया, बाबा पहले हाथ आगे किया ऐसे, मेरा हाथ पकड़ के बाबा कहते हैं बगीचे को रोज रोज सजाने का, नया नया कुछ ना कुछ करने का ये बहुत अच्छा है, बाप दादा सर्टिफिकेट देता है, अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। ये सब बोलने तक बाबा मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं, उसको बहुत बड़ा फोटो बना के अभी भी मेरे सिर के सामने रोज मैं देखता हूँ, और ये हाथ को भी रोज देखता हूँ, ये भगवान ने इस हाथ को वरदान दिया है। इस रीति से हम लोग जिस सेवा में, जिस क्षेत्र में सेवा करते, भले मैं झाड़ू पोछा करे, कुछ भी करे, अगर हम जितनी ट्रस्टी होके 100% बाबा की सेवा हम करेंगे, बाबा सचमुच हमारे साथ है। अभी आप लोग देख रहे हैं मैं चारों धाम में जो फूल रखता हूँ, वो भी जैसे मैंने ज्ञान में आया, ज्ञान में जिस दिन आया उस दिन से मेरा 100% भक्ति छूट गया, भक्ति भक्ति। तो आपको एक एग्जांपल बता, हमारे घर में जब नौकरी से मैं घर आते थे ना, तो घर में हमारे माँ बाप वापस जाने के दिन माँ बाप को दोनों को खड़ा करके उन दोनों की पांव पढ़ के आशीर्वाद लेके ही मैं बाहर जाता था। जब मैं कोर्स लिया उसके बाद में एक दो बार किया होगा, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे उनको पता लग गया आश्रम में जाते पूरा छोड़ दिया मैंने। ओके, तो यहाँ आने के बाद में मैं ऐसे फ्लावर वगैरह इधर उधर रखना वो कुछ नहीं करते थे। एक दिन बड़ी दादी ने बुलाया मेरे को, इधर आओ जी दादी, तुम बाबा के कमरे में रोज फूल क्यों नहीं रखता है? क्योंकि मेरे को पता नहीं था रखना है, क्योंकि ये तो भक्ति मार्ग की बात हो गया। तो दादी ने, नहीं कल से बाबा के कमरे में ताजा फूल रखना। जी दादी, जब से सिर्फ बाबा के कमरे एक जगह पे रखना शुरू किया मैंने, ऐसे ही चलते थे। जब दादी जी ने अव्यक्त हो गया, जानकी दादी, एक दिन शांति स्तंभ में हम लोग 25-30 लोगों के साथ एक मीटिंग किया। मीटिंग के बाद दादी ने मेरे को बुलाया, तुम एक मिनट आओ इधर, इंद्रप्रस्थ में लेके गई। मैं देखती हूँ तुम बाबा के कमरे में तो पुल रखते हैं, बाकी ये तीनों जगह पर क्यों नहीं रखता है? शांति स्तंभ में भी नहीं रखता है, झोपड़ी में भी नहीं रखता है, बाबा का ओम शांति भवन की कमरा वहां भी नहीं रखता है। दादी, दादी जी ने, नहीं नहीं तुम कल से ना चारों जगह रख। जी दादी, उस दिन से ये चारों धाम। इस रीति से जो बड़ों ने हमको आदेश दिया, एक इशारा दिया, वो हमारा लाइफ है, हमारा जीवन है। क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त किया है, बाप समान है। ये मेरी शुरू से ये संकल्प था, ये निश्चय था, आज भी वही।
बहुत सुंदर, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो बीच में आ गया, अभी अंतम है। हमारे पुरुषार्थ की गति तीव्र हो, आपकी नहीं, हमारे पुरुषार्थ की गति तीव्र हो, उसके लिए आपका कोई आदेश, उपदेश, निर्देश या प्रेरणा हो तो आप बताइए।
सब महारथी बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब, तो हम क्या बताऊं। मेरा विचार यही है सिर्फ, क्योंकि हम लोग बड़े परिवार में हैं, बड़े संगठन में हैं, और समय भी बहुत नाजुक है, अंतिम समय में चल रहे हैं हम लोग। तो हम इतना समय, इतना दूर तय करके आए हैं, अभी थोड़ा ही दूर बाकी है, तो हम पूरा मंजिल तक पहुंचना है।
कितना दूर?
तो इस रीति से अगर हमको पूरा मंजिल तक पहुंचने के लिए, सिर्फ मेरा विचार ये है, बाबा जो मुरली में कहते हैं उस अनुसार अपने को देखें। क्योंकि अभी हम बहुत कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि यज्ञ में बहुत पुराने लोग हैं, इतने सालों से है वो, ये बी सी, ऐसे बहुत कुछ देखने में मिलता है। परंतु हमारे बुद्धि के अंदर ये फिक्स रहे सदा, हम यहाँ आए किस लिए, अभी हम क्या कर रहा हूं। अगर इतना हम सोच के हम आगे बढ़ते जाएंगे, बाबा रोज मुरली में हमको जो सुनाते हैं उसी रीति से हम उस अनुसार भले कितना एक दो पॉइंट भी हमारा बुद्धि में रख के विचार करके अपनी सेवा में बाबा जो हमको मुकरर किया है उस सेवा में हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा मैंने पहले ही जो कहा, जो कर्म हम करेंगे हमको देगा और करेगा, यही मेरा विचार है।
आप जिस कमरे में भी रहते हैं, इससे पहले आप कहाँ रहते थे?
पहले थोड़ा दिन, दो चार महीना हम लोग ओम शांति अपने विशाल भवन में सेवादारी के कमरा है ना, वहाँ रहते, सिर्फ दो चार महीने ही था। मैंने चार महीने के बाद इसी कमरे में आ गए हमें शुरू से।
हम
उस समय हम लोग 13 लोग थे इस कमरे, एक ही कमरे में,
नीचे वाला कमरे।
एक पांव रखने का भी जगह नहीं था, ऐसा कटिया था। क्योंकि उस समय कहीं भी ना ज्ञान सरोवर था, ना शांतिवन था, सब इधर ही थे। और 13 लोग हम थे, फिर भी ओम शांति भवन में अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो गया माना उसको खाली करना था हमको, क्योंकि वो प्रेस रूम था, ये आपके डिपार्टमेंट का, तो इस कारण से खाली करके हम लोग इधर उधर भटकते थे। तो इस रीति से उस समय का भी एक अलग अनुभव है, 13 लोग होते हुए भी इतना अच्छी तरह से प्यार से बहुत। आज की डेट में मैं अकेला ही हूँ वहाँ, क्योंकि सब भटके हैं इधर उधर, कुछ ने शरीर छोड़ दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे कटिया कम करते, 7 कटिया रखा था। जब बड़ी दादी ओम शांति भवन में क्लास पूरा किया, एक दिन हम लोग भी क्लास करके नीचे गए, कमरे में गए, सीधा दादी वहां सीढ़ी से उतर के हमारे कमरे के अंदर आ गई। हमको पता ही नहीं है, हम लोग डायरी वगैरह रख के ऐसे मुंह के देखते, दादी दरवाजे के पास खड़ी है अंदर। फिर दादी जी ने गिनती किया, 1 2 3 7 कटिया है, ये 7 तो ज्यादा है, एक कम होना चाहिए, ऐसे दादी जी ने कहा। तो हम लोग तो वही सोच के रखा था, एक किसी ने छोड़ा उसी दिन हम लोग कटिया निकाल दिया। तो मुन्नी बहन ने दूसरे को भेजा, बहन जी देखो दादी जी ने कहा है। ऐसे एक एक करके अभी छोटे लालम दोन तो परमानेंट रहते हैं यहाँ, और बाकी नागेश का भी आता है राव जी का, छोटे लाल तो अभी बट्टी कराने गया है, मैं अकेले ही बाबा है।
तो अभी ये आपको अच्छा लगे ना बहुत? तो आप इधर तो नजदीक ही पड़ता है ना आपको डेली। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करने की आनी, तो भले रोज नहीं आओ, बीच बीच में आप दर्शन देंगे तो हमें मुमुक्षुता बना रहेगा। और कोई विशेष ऐसी कोई बात, कोई अनुभव हो जो और रोचक हो और हमको भी उससे मुमुक्षुता मिले?
हम लोग इतना भी अभी तक सेवा क्षेत्र में इसे में आगे बढ़ने के लिए मुख्य प्रेरणा है हमारा विश्व रतन दादा। शुरू शुरू में जब हम लोग सेवा में आते थे उस समय दूसरा कोई भी सेवादारियों का क्लास अभी जैसा वो किया ये किया इसे नहीं करता था, सिर्फ दादा ही क्लास लेते थे, बहन जी को पता होगा। और दादा से हम लोग पूछते थे, एक बार हमने पूछा दादा हम लोग सब मिलके, उस समय 20-25 ही सेवादारी होते थे, विशाल भवन में क्लास होता था छोटे एक हॉल में, दादा हमको पूरा यज्ञ की हिस्ट्री सुनना है। दादा एक एक शब्द को जैसे एक एक बाल जितना भी पॉइंट को एक महीना तक एक एक घंटा सुनाया यज्ञ की बात। इस रीति से बाबा ने दादा ने सेवा के बारे में इतना सुनाता था वो सुन सुन के हम लोग एकदम पक्का हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब आवरण करने जी ओम शांति। तो आज हमारे आदरणीय नन्यप्पा भाई जी हम सभी के बीच पधारे, अपने लौकिक अलौकिक प्रेरणादायी अनुभव हम सभी के प्रति शेयर किए, और विशेष इस संगठन के बीच में चलते हुए आपने कहा कि इस संगठन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि बड़ा परिवार है तो बड़े परिवार के कारण आपस में कई बातें टकराव मनमुटाव के रूप में हो सकती हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा हम सामने रखेंगे तो उन बातों से हम सहज ही मुक्त रह सकेंगे। तो हमारे भाई जी हम सभी के बीच पधारे, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। शुक्रिया।